بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس ناول کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ناول بلیک جیک ریکارڈ کر رہے ہیں. اس ناول کے مصنف ظہیر احمد ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 03212138225, 03002919600, یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. پیش لفظ. میرا نیا ناول بلیک جیک آپ کے ہاتھوں میں ہے. میری سابقہ کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی منفرد اور انوکھے موضوع کی حامل ہے. بعض کہانیاں اپنی مثال آپ ہوتی ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد عجیب سی شگفتگی اور تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے. بلیک جیک کی کہانی بھی جہاں آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹوں کے دریا بہا دے گی، وہاں آپ بلیک جیک کے کردار سے بھی مل کر نئی تازگی کا احساس کریں گے. بلیک جیک، جو عمران کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا کلاس فیلو رہ چکا تھا اور یونیورسٹی کے زمانے سے ہی عمران سے بیر رکھتا تھا، وہ جب ایک سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر اپنے پرانے رقیب سے ٹکراتا ہے تو وہ عمران کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنی تمام تر سائنسی صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے، اور عمران کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے اور اس سے اپنے تمام سابقہ حساب بے باک کرنے کی سعی کرتا ہے. مگر آخر عمران بھی عمران ہے. اگر بلیک جیک عمران کو اپنا دشمن نمبر 1 گردانتا ہے تو پھر عمران بھلا ایسے دشمن کو پیچھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ نہ صرف کھل کر بلیک جیک کے سامنے آتا ہے بلکہ اس کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، اور بلیک جیک پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ عمران عمران ہے، جس کا مد مقابل اس روئے زمین پر ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. بلیک جیک کی نئی انوکھی اور سسپینس سے بھرپور کہانی آپ کے ذہنوں پر یقیناً لافانی اور یادگار نقوش چھوڑ جائے گی. میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں آپ کے لیے نت نئے انوکھے اور منفرد انداز کے ناول تحریر کر سکوں جو اس سے قبل آپ نے کبھی نہ پڑھے ہوں. والسلام، ظہیر احمد. سلیمان پر ان دنوں گلابی اردو بولنے کا بھوت سوار تھا. وہ پچھلے ماہ اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا اور وہاں 1.5 ماہ گزار کر آیا تھا، اور اس نے آتے ہی گلابی اردو بول کر عمران کا ناطقہ بن کر رکھا تھا. وہ اردو اور پنجابی کی ایسی ریڑ مارتا تھا کہ عمران گھنٹوں اپنا سر پکڑے اس کے جملوں کا مطلب سوچتا رہتا. بعض اوقات وہ ایسے ایسے جملے بول جاتا تھا کہ عمران ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتا تھا. اس وقت عمران صوفے پر بیٹھا صبح کا اخبار دیکھ رہا تھا اور سلیمان کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھا. کچن سے اس کی اونچی آواز میں گیت گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس کے بول کچھ عمران کی سمجھ میں آ رہے تھے اور کچھ اس کے سر پر سے گزر رہے تھے، لیکن سلیمان یوں لہک لہک کر گا رہا تھا جیسے وہ پنجابی گائکی کی دنیا کا سب سے بڑا سنگر ہو. چند لمحوں بعد وہ اسی طرح گنگناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی. لو جی، سوہنے بادشاہ ہو، آپ کے لیے گرما گرم ناشتہ تیار ہے. سلیمان نے ناشتے کی ٹرے عمران کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے لہک کر کہا تو عمران نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا. مہاراج تانسین کی آخری نسل کی آخری بے سری اولاد، یہ تم صبح صبح کن بدروحوں کو بلانے کے لیے راگ الاپ رہے ہو؟ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. راگ، اور وہ بھی بے سرے؟ اے کہہ کے تسی نے میرے دل وچ ہریاں مرچاں بھر دی ہیں. میں تے ملکہ ترنم دور جہاں دا نہایت سری لاتے دلکش گیت گا رہا تھا، سلیمان نے برا سمو بناتے ہوئے کہا. دور جہاں؟ یہ دور جہاں کون ہے؟ کسی فورن کنٹری کے سنگر کو تو تم دور جہاں نہیں کہہ رہے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا. میں ملکہ ترنم ماہ نور جہاں دی گل کر رہا ہوں صاحب جی. وہ چونکہ اب اس دنیا میں نہیں رہی और इस जहां तो दूर चली गई हैं, इसलिए मैं उन्हें मलका तरन्नुम दूर जहां कह रहा हूं। सुलेमान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तो क्या तुम्हारे जिस्म में इस मैडम दूर जहां की रूह हलूल कर गई है और इसीलिए तुम उसके गीत गा रहे हो, इमरान ने हंसते हुए कहा और चाय का कप उठाकर चाय सिप करने लगा। ऐसी गल नहीं है साहब, मैं मलका तरन्नुम दूर जहां का बहुत बड़ा फैन बल्कि पेडिस्टल फैन हूँ। ओ ना दी गल सो दिल सोज आवाज ले और उनकी गायकी, दा दिल दादा बल्कि दिल पर दादा हूँ। ऐस लई मैं उनके गीत गाकर उनकी रूह नू सुकून बख्शता रहता हूँ, सुलेमान ने कहा तो ना चाहते हुए भी इमरान के हलक से कहकहा निकल गया। तुम उस मैडम दूर जहां के गीत गाकर उनकी रूह को सुकून बख्श रहे हो या उसकी रूह को तड़पा रहे हो, इमरान ने कहा। तड़पा रहा हूँ। वो कैसे, सुलेमान ने हैरान होकर कहा। वो ऐसे मेरे चुन्ने मुन्ने बच्चे कि मलका तरन्नुम के गाए हुए गीत जिस अंदाज में तुम गा रहे हो उसे सुनकर मलका तरन्नुम दूर जहां की रूह बेबसी से तड़प रही होगी और उसका बस नहीं चल रहा होगा कि वो तुम्हारे सर पर आकर इतने जूते मारे कि तुम तो क्या तुम्हारी आइंदा पैदा होने वाली 7 नस्लें भी गंजी पैदा हो, इमरान ने स्लाइस उठाते हुए कहा। जान दे ओ जट्टा, मेरी आवाज अब एनी भी बुरी नहीं है, सुलेमान ने कहा तो इमरान जो चाय का सिप ले रहा था उसके अंदाज पर इस बुरी तरह से हंस पड़ा कि बमुश्किल कप से चाय छलकती हुई बची थी। तू कितनी बुरी है ये खुद ही बता दो, इमरान ने हंसते हुए कहा। की गल कर रहा ए शहजादिया, मैं जब गांव में ऊंची टीकरी ते बैठकर गाना शुरू करना सा तो गांव की मुटियारा मेरे आगे पीछे इकट्ठी हो जाती थी, सुलेमान ने फाखराना लहजे में कहा। उनके हाथ खाली होते थे, इमरान ने चौंक कर कहा। नहीं, किसी कोल डंडा, किसी के हाथ झाड़ू और किसी दे हाथ विच कूड़े दा डब्बा होता था, सुलेमान ने कहा तो इमरान के लबों पर एक बार फिर मुस्कुराहट तैरने लगी। बस तो फिर तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनती होगी कि सारा गांव देखता होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ साहब, दुर्गत तो वाकई मेरी बनती थी। पहले ओ मैनू झाड़ू और डंडे मार मार कर अधमुआ कर देती थी, फैर मुझ पर कूड़ा फेंकती, मगर फैर, सुलेमान कहते कहते रुक गया जैसे उसकी कुछ समझ में ना आ रहा हो। मगर फैर, फैर क्या होता है, इमरान ने भी उसी के अंदाज में कहा। पता नहीं उनके जहन में क्या आता था कि वो मुझे बड़ी इज्जत और मोहब्बत से उठाती, मेरा मुंह काला नीला करती, फेर मेरे गले विच जूतों का हार पहना देती थी, फेर एक मुटियार कहीं से गधा हाँक कर लाती थी और मुझे उसते उल्टा बिठा दिया जाता था, कुछ मुटियारा मेरे अग्गे तो कुछ मेरे पीछे होती थी, फेर मैं इन मुटियारों के साथ गांव दे चक्कर लगाता था, मगर मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ओ ऐ सब मेरी इज्जत अफजाई दे लई करती थी या फेर मेरा मखौल बनाती थी, सुलेमान ने कहा तो इमरान के जोरदार कहकहे से कमरा गूंज उठा। असल में आज इमरान सुबह उठा था तो वो जरूरत से ज्यादा संजीदा था और सुलेमान से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। वो खासा उलझा हुआ था और परेशान दिखाई दे रहा था। पहले तो उसे परेशान देखकर सुलेमान खामोश हो गया था, मगर जब उसने इमरान को हद से ज्यादा संजीदा देखा तो उसने जानबूझकर ऐसी अहमकाना बातें शुरू कर दी, मगर इस वक्त तक इमरान का मूड खासा बहाल हो चुका था जिसकी वजह से सुलेमान की मजाहिया बातों पर खूब दिल खोल कर हंस रहा था। वो तुम्हारी इज्जत अफजाई करती थी अहमक, अगर उन्हें तुम्हारी बेइज्जती करना होती तो वो सड़े हुए अंडे, गंदे टमाटर और न जाने क्या क्या तुम पर फेंकती और फिर तुम्हें धक्के देकर गांव से निकाल देती या फिर तुम्हें उठाकर किसी कुएं में फेंक देती, इमरान ने हंसते हुए कहा। ओह हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया सी, मैंने भी अपनी इज्जत अफजाई ते गला फाड़ फाड़ कर ओनानू पुराने गीत सुनाने शुरू कर दिए थे, इस बार सुलेमान ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। अगर उन मुटियारों के साथ मैं भी वहां होता तो मैं उनसे तुम्हारी और इज्जत अफजाई करा सकता था, इमरान ने कहा। वो किस तरह साहब जी, सुलेमान ने इमरान की जानिब इश्तियाक भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा सर मूंद कर तुम्हारी भवें भी साफ करा देता, फिर तुम्हें फकत नेकर बनियान में उस गधे पर बिठाकर गांव से शहर और शहर से पूरे मुल्क में ले जाता, जहां तुम जैसे गायब की पूरी मुल्क में धूम मच जाती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब जी मजाक एक पासे, एक गल दसो, रात आप खैरियत नाल ते सोए ही सोए सी ना? सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा, हाँ क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा, तुहाडे बिस्तर विच चींटियां वगैरह तो नहीं आ गई थी? सुलेमान ने कहा, चींटियां क्या मतलब? इमरान ने कहा, क्योंकि वो सुलेमान की बात का मतलब ना समझ पाया था, तुसी कोई डरोना सपना मेरा मतबल ए ख्वाब तो नहीं देखा था? सुलेमान ने उसी अंदाज में कहा, नहीं क्यों, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने वाकई हैरान होते हुए कहा, वो अभी तक सुलेमान की बातों को समझ ना सका था। तुहानू किसी शहर की मुटियार दे नाल इश्क विश्क ते नहीं हो गया? सुलेमान ने कहा, तो इमरान उसकी जानिब गौर से देखने लगा, लेकिन सुलेमान के चेहरे पर गहरी संजीदगी नजर आ रही थी। तुम्हारे होते हुए किसी मुटियार का ख्याल कहाँ से आ सकता है सुलेमान मियाँ? इमरान ने कहा, मेरे होते हुए? अरे वो क्यों, इस बार हैरान होने की बारी सुलेमान की थी। जाहिर है मैं तुम्हारे ही खर्चे नहीं उठा सकता, तो किसी मुटियार का खर्चा कहाँ से उठा सकूंगा? तुम तो फिर मुझ गरीब पर तरस खाकर उधार लाकर मुझे चाय पिला देते हो और मूंग की दाल खिलाने के लिए दे देते हो, मगर मैं किसी मुटियार की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका तो ना वो मुझे चाय पिलाएगी और ना ही मूंग की दाल खिलाएगी। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, तो सुलेमान बेख्तियार हंस पड़ा। अब मुझे यकीन हो गया है कि आपका जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, सुलेमान ने हंसते हुए कहा। चक्कर? कैसा चक्कर? इमरान ने चौंक कर कहा, वही चक्कर जिसमें ना रात को नींद आती है ना दिन को सुकून। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई हो गया है, इमरान ने अचानक चेहरे पर सोगवारी तारी करते हुए कहा, तो सुलेमान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर अचानक रंगों की फुहार सी बरसने लगी थी। इश्क? सुलेमान ने जल्दी से कहा। नहीं, इमरान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, तो सुलेमान के अरमानों पर जैसे औस पड़ गई। आपने खुद ही तो कहा था कि आपको वो हो गया है, सुलेमान ने जल्दी से कहा। हाँ मुझे वो हो गया है, इमरान ने फिर उसी अंदाज और लहजे में कहा। ये वो है क्या, आपको कैसे और कब हो गया? सुलेमान ने झटक कर कहा, कल रात हुआ था, फिर आधी रात को खत्म हो गया, मगर अब फिर हो गया है। इमरान ने चेहरे पर और ज्यादा गम और उदासी तारी करते हुए कहा, तो सुलेमान चंद लम्हे गौर से इमरान को देखता रहा। इमरान का अंदाज साफ बता रहा था कि वो सुलेमान को पूरी तरह जिद करने पर तुला हुआ है। अरे बाप रे, कहीं आपको इख्तलाज कल्ब तो नहीं हो गया? सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं मुझे वो हो गया है, इमरान ने कहा। खुदा का शुक्र है, वरना मुझे फिक्र लग गई थी कि अगर आपको इख्तलाज कल्ब हो गया तो मैं अपनी तनख्वाहें किससे वसूल करूंगा। लेकिन ये आपको वो नाम की बीमारी हुई क्या है? सुलेमान ने कहा। बीमारी नहीं, वो हो गया है, इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा, तो सुलेमान ने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया। लगता है आपको डबल बल्कि ट्रिपल नमूनिया हो गया है, जिसने आपके दिमाग पर गहरा असर डाला है, सुलेमान ने जिद होते हुए कहा। नहीं नमूनिया भी नहीं हुआ, वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, इमरान ने दिलगीर लहजे में कहा। वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था? सुलेमान ने हैरान होते हुए कहा। इमरान की बात वाकई उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। वही जो हो गया है, इमरान ने कहा, और इस बार सुलेमान का दिल चाहा कि वो या तो इमरान के सर पर कोई चीज मार दे या फिर अपने सर पर मार दे। इमरान के चेहरे पर हुनूर संजीदगी तारी थी, फिर अचानक इमरान की आंखों से मोटे आंसू उबल पड़े। ये देखकर सुलेमान बुरी तरह से उछल पड़ा। साहब आप रो रहे हैं? सुलेमान ने इमरान की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलते देखकर इंतहाई परेशान और बौखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं आंसू बहा रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। सुलेमान की हालत देखने वाली हो गई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो इमरान की बात सुनकर हंसे क्या उसके आंसू देखकर खुद भी रोना शुरू कर दे। मगर आप ये आंसू क्यों बहा रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? सुलेमान ने परेशानी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा। मुझे वो हो गया है, इमरान ने कहा, तो सुलेमान ने बेख्तियार अपने सर के बाल दोनों हाथों से पकड़ लिए। फिर वो हो गया है, आखिर ये वो है क्या? सुलेमान ने अपने बाल नोचते हुए कहा। वो, इमरान ने बड़ी बूढ़ियों की तरह हाथ नचाते हुए कहा। अगर आपको वो हो गया है तो फिर मुझे भी वो हो गया है, सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन तुम्हें वो कैसे हो सकता है, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। अगर आपको हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हें वो नहीं हुआ जो मुझे हुआ है, इमरान ने जोर से सर हिलाते हुए कहा। तो सुलेमान का दिल चाहा कि वो दीवारों से सर सर टकराना शुरू कर दे। इमरान के चेहरे पर हद से ज्यादा संजीदगी छाई हुई थी और उसके जिस तरह आंसू बह रहे थे उस पर इमरान ने जिस तरह वो की गर्दान जारी कर रखी थी उससे सुलेमान को वाकई इख्तलाज कल्ब होना शुरू हो गया था। साहब खुदा के लिए मैं आपके घुटनों को हाथ लगाता हूँ, मुझे बता दे कि आपको क्या हुआ है और आप इस तरह से आंसू क्यों बहा रहे हैं, सुलेमान ने रोनी सूरत बनाकर इमरान के सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। बताया तो है कि मुझे वो हो गया है, अब मैं तुम्हारे लिए आंसू ना बहाऊं तो क्या करूं, इमरान ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए क्या मतलब, आप मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं, मगर क्यों, सुलेमान ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। इसलिए कि मुझे, इमरान ने इतना ही कहा था कि सुलेमान पैर पटकता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मुझे मालूम है कि आपको वो हो गया है, आपको वो मुबारक हो, मैं जा रहा हूँ, सुलेमान ने कहा। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो, इमरान ने कहा। वो करने, सुलेमान ने मुड़कर गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा बैतुल खला जा रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बैतुल खला नहीं, मैं किचन में जा रहा हूँ, सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन किचन में तुम भला वो कैसे कर सकते हो, इमरान ने हैरान होते हुए कहा। तो सुलेमान के नथनों से सांड जैसी आवाजें निकलने लगी। मैं किचन में खुदकुशी करने जा रहा हूँ, समझे आप, सुलेमान ने दांत किचकिचाते हुए कहा। देखा मैंने कहा था ना कि मुझे वो हो गया है, अब तुम यही करोगे और तुम कर भी क्या सकते हो, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। तुम्हारे बाद में जली कटी किसकी सुनूंगा, मुझे चाय कौन पिलाएगा, मेरे लिए मूंग की दाल कौन बनाएगा और मुझसे बचपन से लेकर अब तक की तनख्वाहें कौन वसूल करेगा। हाय मेरा बावर्ची सुलेमान, हाय, इमरान ने बाकायदा बूढ़ियों की तरह सीने पर हाथ मारकर रोना शुरू कर दिया और उसकी जानदार अदाकारी पर सुलेमान हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। वो इमरान की जानिब यूं देख रहा था जैसे इमरान के बजाय वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक को देख रहा हो। लम्हे बाद वो इमरान को इसी अंदाज में देखता रहा, फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ इमरान के पास आया और इमरान के कदमों में बैठकर उसने वाकई इमरान के घुटनों पर हाथ रख दिए। अरे ये क्या कर रहे हो, इमरान ने सुलेमान की इस हरकत पर बौखलाते हुए कहा। मैं मान गया साहब, आप जैसा अदाकार वाकई दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मैंने सोचा था कि गांव से जो पंजाबी सीख कर आया हूँ उसे और उर्दू को मिलाकर मैं आपका नाटका बंद कर दूंगा। आप मुझे हर वक्त जिस तरह जिद करते रहते हैं इस बार मैं आपको जिद करने पर मजबूर कर दूंगा, मगर मैं नाकाम हो गया हूँ। आपका मुकाबला करना और आपसे बातों में जीतना वाकई मुझ जैसे अदना बावर्ची के बस की बात नहीं है। मैं गुलाबी उर्दू से आपको पागल करना चाहता था, मगर आपकी वो ने मुझे ही पागल बनाकर रख दिया है। अब या तो आप मुझे वो के बारे में बता दें या फिर, सुलेमान ने कहता चला गया, या फिर क्या, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। या फिर आप मुझे अपने हाथों से शूट कर दें, सुलेमान ने इस तरह कहा जैसे उसके सबर का पैमाना लबरेज हो गया हो। ठीक है, कमरे की मेज की दराज से मेरा पिस्टल ले आओ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो सुलेमान चौंक कर इमरान की शक्ल देखने लगा। पिस्टल, पिस्टल का क्या करेंगे आप, सुलेमान ने हैरान होते हुए कहा। तुमने खुद ही तो कहा है कि मैं तुम्हें शूट कर दूं, और शूट जाहिर है पिस्टल ही से किया जा सकता है। तुम्हें शूट करने के बाद मुझे भी यकीन हो जाएगा कि मुझे जो वो हुआ था गलत नहीं हुआ था, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। तो आप मुझे गोली मारेंगे, सुलेमान ने इमरान के घुटने छोड़कर एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। गोली, अरे हाँ मैं तुम्हें गोली कैसे मार सकता हूँ, मुझे जो वो हुआ था इस लिहाज से तो तुम्हें खुदकुशी करनी चाहिए और वो भी 9 मंजिला इमारत की खिड़की से कूदकर, इमरान ने जल्दी से कहा। खुदकुशी, 9 मंजिला इमारत की खिड़की से कूदकर, क्यों, मैं क्यों करने लगा 9 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी, सुलेमान ने हैरत ज्यादा लहजे में कहा। मुझे वो जो हुआ है, इमरान भला इतनी आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। अब तो वाकई मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी और मैं तो 9 मंजिला इमारत से नहीं बल्कि 18 मंजिला इमारत से कूद कर खुदकुशी करूंगा, सुलेमान ने एक बार फिर गुस्से में आते हुए कहा। नहीं, तुम 18 मंजिला इमारत से नहीं 9 मंजिला इमारत से ही कूदोगे, क्योंकि मुझे यही महसूस हो रहा है, इमरान ने कहा। तो सुलेमान बुरी तरह से चौंक पड़ा। महसूस होना? तो आप वो महसूस होने को कह रहे हैं, सुलेमान ने जल्दी से उसकी बात का मतलब निकालते हुए कहा। हाँ, मैं जब सुबह सोकर उठा तो मुझे महसूस हुआ था कि मेरा प्यारा बावर्ची आज 12 बजे से पहले किसी ना किसी बात पर तंग आकर 9 मंजिला इमारत से कूद कर अपनी जान दे देगा और मैं अपने इस बावर्ची को कभी नहीं देख सकूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आंसू बहा रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुम्हारा किस कदर खैरख्वाह और कदरदान हूँ, इमरान ने कहा। तो सुलेमान का दिल चाहा कि अपने पांव से जूता उतार कर खुद ही अपने सर पर मार मार कर अपना सर गंजा कर ले। उसने इतने दिनों से इमरान को गुलाबी उर्दू बोल बोल कर परेशान कर रखा था और इमरान ने एक ही दिन में उसका हिसाब बेबाक कर दिया था। शायद इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला इमरान, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान की तो उसकी बात सुनकर इमरान ने उछल कर यकदम उसकी गर्दन पकड़ ली। तुमने मुझे चूहा कहा, तुम एक मामूली बावर्ची। अली इमरान, MSc DSc ऑक्शन को चूहा कहो, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, मुक्का मार कर तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा और तुम्हें वो कर दूंगा, वो मतलब रंडवा, और वो भी बिन ब्याह। इमरान ने उसकी गर्दन दबोचते हुए मस्नूई गुस्से की अदाकारी करते हुए कहा। साहब, जरूरी नहीं है कि पहाड़ खोदने से चूहे निकले, बास पहाड़ खोदने से हीरे भी निकल आते हैं। मैंने सिर्फ आपका नाम लिया था। अब आप खुद को हीरा समझें या चूहा, ये तो आपकी अपनी अकल की बात है, सुलेमान ने इमरान से अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा। तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। चलो, किसी को तो मेरी कदर हुई जो मुझे हीरा समझने लगा है, इमरान ने हंसते हुए कहा। ही अंग्रेजी का लफ्ज है जिसके मानी मर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं और रा कदीम जमाने की अबरानी जबान में चूहे के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आप खुद को चूहा समझें या हीरा, क्या फर्क पड़ता है, सुलेमान ने इमरान पर बड़ी खूबसूरत सी चोट करते हुए कहा। और इससे पहले कि इमरान इस पर जवाबी चोट करता, सुलेमान यकलख्त भाग कर कमरे से निकल गया और इमरान ने बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। खुदा की पनाह, बड़ा आलिम फाजिल बावर्ची है जिसे कदीम जमाने की अबरानी जबान रा का मतलब भी मालूम है, चाहे उसने इस लफ्ज का मानी अपनी पर्सनल लुगत ही से क्यों ना बनाया हो, इमरान ने कहा। बातों बातों में उसने नाश्ता भी कर लिया था। वो चंद लम्हे सोचता रहा। उसी लम्हे अचानक कमरे में पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस अली इमरान, बंदाए जाहिला बोल रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर उठाकर अपने मखसूस लहजे में कहा। ताहिर बोल रहा हूँ इमरान साहब, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। उसके लहजे में बेपनाह संजीदगी और तशवीश का उनसर नुमाया था, जैसे उसने इमरान की मजाहिया बात सुनी ही ना हो। ना सलाम ना दुआ, बस फोन उठाया, नंबर मिलाया और लठ मार दी। क्या यही आदाब है तुम्हारे, इमरान ने गुस्से से कहा। ओह सॉरी इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने जल्दी से कहा और सलाम करने लगा। हाँ, अब हुई ना बात, बहरहाल पू तो नहाओ, दूधो फलो, और वो क्या कहते हैं, जीवंदा रह सोनिया, इमरान ने उसकी सलाम का जवाब देकर एक बार फिर पटरी से उतरते हुए कहा। इमरान साहब, मैं इस वक्त बेहद परेशान हूँ, आप फौरन मेरे पास आ जाएं, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने उसी तरह परेशान लहजे में कहा। क्यों, कोई खास बात हो गई है, इमरान ने ब्लैक जीरो के लहजे में शदीद परेशानी को महसूस करके संजीदगी से कहा। जी हाँ, बहुत ही खास बात हो गई है, आप प्लीज जल्द आ जाएं, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर ट्रेडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर यकलख बेपनाह संजीदगी और उलझन के तासुरात नुमाया हो गए थे। कहीं वाकई वो तो नहीं हो गया जिसके बारे में मैं रात ही से परेशान और फिक्रमंद हूँ, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे सुलेमान खाली ट्रे लिए हुए अंदर आ गया और शायद नाश्ते के बर्तन उठाने आया था। साहब जी, होर चाह शाह पीनी है तो दसो, आज मैंने, सुलेमान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, मगर इमरान के चेहरे पर तरद्दुद और संजीदगी देखकर उसने अपना फिक्र अधूरा छोड़ दिया। सुलेमान, मैं दानिश मंजिल जा रहा हूँ, 10 बजे एक्रीमिया से रेड ब्रून्स की कॉल आएगी, और उसे दानिश मंजिल के फोन से लिंक कर देना, इमरान ने संजीदगी से कहा। जी बेहतर, सुलेमान ने भी संजीदगी से कहा। वो इमरान के संजीदा होने का मतलब जानता था कि इमरान की संजीदगी खाली इल्लत नहीं होती, जरूर कोई अहम और परेशान कुन मामला होगा। इमरान ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया और सुलेमान खामोशी से बर्तन समेटने लगा। चंद ही लम्हों में इमरान ड्रेसिंग रूम से लिबास तब्दील करके बाहर आ गया और फिर वो फ्लैट से निकलता चला गया। कुछ ही देर बाद वो अपनी स्पोर्ट्स कार में सवार दानिश मंजिल की जानिब उड़ा चला जा रहा था। खयाबान होटल की तीसरी मंजिल के एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो कमरे में मौजूद एक गैर मुल्की खूबसूरत लड़की क्लास्टा, जो सोफे पर बैठी अंग्रेजी अखबार के मुताले में मसरूफ थी, बेख्तियार चौंक पड़ी। कौन है? क्लास्टा ने ऊंची आवाज में कहा। वेटर मादाम, दरवाजे के बाहर से आवाज सुनाई दी। आ जाओ, दरवाजा खुला है, क्लास्टा ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक वेटर कॉफी की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। वेटर के चेहरे पर नजर पड़ते ही क्लास्टा के चेहरे पर इत्मीनान छा गया था। वेटर ने क्लास्टा को सलाम किया और ट्रे से बर्तन उठाकर उसके सामने पड़ी हुई मेज पर सजाने लगा। क्या खबर है? क्लास्टा ने वेटर की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए दबे से लहजे में कहा। काम हो गया है मादाम, आप फिरदौस कॉलोनी कोठी नंबर 410 में पहुंच जाएं, वेटर ने कॉफी की प्याली तैयार करते हुए कहा। ठीक है, क्या वहां सब इंतजाम हो चुका है? क्लास्टा ने कहा। यस मादाम, तमाम काम मुकम्मल है, वेटर ने मुख्तसर से जवाब दिया। बीजे कहाँ है? क्लास्टा ने पूछा। वो भी वहीं पहुंच चुके हैं, उन्होंने मुझे आपको वहां पहुंचने का पैगाम देने के लिए कहा था, वेटर ने जवाब दिया। गुड, बीजे ने कोई खास कोड बताया है? क्लास्टा ने उसी अंदाज में कहा। यस मादाम, कोठी के गेट पर आप 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न देंगी तो गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आप कार पोर्च में ले जाएंगी तो मुसल्ला अफराद आपसे कोड पूछेंगे तो आप एलाई कहेंगी, जवाब में आपको ओप्स कहा जाएगा और फिर आपको मेन रूम में बीजे के पास पहुंचा दिया जाएगा। वेटर ने कॉफी में चीनी मिलाकर क्लास्टा के सामने मुअद्दबाना अंदाज में कप रखते हुए कहा। एलाई ओप्स, गुड, अच्छा कोड है, क्लास्टा ने कहा और कॉफी का कप उठा लिया। वेटर ने क्लास्टा को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और कमरे से निकल गया। क्लास्टा ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कॉफी पीनी शुरू कर दी। फिर उसने कॉफी खत्म करके उठकर जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और फिर एक सफरी बैग में डालकर वो बड़े मुतमईन अंदाज में कमरे से बाहर निकल गई। फिर होटल से बाहर आकर उसने एक टैक्सी हायर की और एक कमर्शियल प्लाजा में आ गई। कमर्शियल प्लाजा की बेसमेंट में जाकर उसने एक हॉस्टल निकाली और उसका कार्ड सिक्योरिटी गार्ड को देकर कार बाहर ले आई। चंद ही लम्हों बाद उसकी कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई फिरदौस कॉलोनी की जानिब बढ़ी चली जा रही थी। फिरदौस कॉलोनी पहुंचकर वो कोठरियों के नंबर चेक करने लगी। ये जदीद तर्ज की नई तामीर शुदा कॉलोनी थी और इस कॉलोनी की कोठियां बेहद वसी और फर्निश्ड थीं। कोठियों के नंबरों को देखती हुई उसने ब्राउन रंग के एक बड़ी सी कोठी के गेट के सामने कार जाकर रोक दी। कोठी के एक पिलर पर 410 लिखा हुआ था। क्लास्टा ने कार गेट के करीब ले जाकर 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो गेट की जेली खिड़की खुली और एक खौफनाक चेहरे वाले नौजवान ने झांक कर गौर से क्लास्टा को देखा। फिर वो चेहरा पीछे हट गया और खिड़की बंद हो गई और फिर उसके साथ ही गेट खुदकार अंदाज में खुलता चला गया। जैसे ही गेट खुला, क्लास्टा कार अंदर ले गई और उसने कार पोर्च में ले जाकर रोकी, जहां ऐसी ही 3 कारें पहले से मौजूद थी। क्लास्टा ने जैसे ही कार पोर्च में रोकी, गेट खुद ब खुद बंद हो गया और उसी लम्हे सुतूनों की ओट में छुपे हुए 3 नकाबपोश निकले और उन्होंने कार को घेर लिया। उनके हाथों में मशीन गने थी। कोड, एक नकाबपोश ने क्लास्टा की तरफ देखते हुए कहा। एलाई, क्लास्टा ने कहा। ओप्स, नकाबपोश ने कहा और उसके साथ ही उसने मशीन गन की नाल नीचे कर ली। उसके देखा देखी दूसरे नकाबपोशों ने भी गने नीचे कर ली और वो तेजी से पीछे हटते चले गए। आइए मादाम, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, इस बार उस नकाबपोश ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में क्लास्टा से मुखातिब होकर कहा, जिसने उससे कोड पूछा था। क्लास्टा कार से बाहर निकल आई। नकाबपोश उसे लिए हुए कोठी के मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ एक छोटे से कमरे में आ गया। उसने कमरे की शुमाली दीवार के करीब लगा एक स्विच बटन 3 बार मखसूस अंदाज में दबाया तो दीवार दरमियानी हिस्से से फटकर साइडों की दीवारों में घुसती चली गई। अब वहां एक और छोटा सा कमरा नजर आ रहा था। लिफ्ट में तशरीफ ले जाएं मादाम, या आपको बॉस तक ले जाएगी। नकाबपोश ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो क्लास्टा उस छोटे से कमरे में दाखिल हो गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसका दरवाजा बंद हो गया और साथ ही क्लास्टा को यूं लगा जैसे छोटा कमरा नीचे की तरफ जा रहा हो। चंद लम्हों बाद फर्श को खफीफ सा झटका लगा और उसी लम्हे सामने का दरवाजा खुल गया। सामने एक हॉल नुमा बड़ा सा कमरा था। कमरे में तेज रोशनी फैली हुई थी और कमरा किसी बड़ी लेबोरेटरी का मंजर पेश कर रहा था। दीवारों के सामने बेशुमार बड़ी बड़ी अजीब व गरीब और पेचीदा मशीनें लगी हुई थी और वहाँ 6 अफराद सफेद कपड़ों में मलबूस और चेहरों पर सफेद नकाब लगाए उन मशीनों पर काम करते नजर आ रहे थे। सामने एक दीवार के कोने में शीशे का एक बड़ा सा कैबिन बना हुआ था जिसमें एक बड़ी मेज के पीछे एक लंबा तड़ंगा और वर्जिशी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसने सियाह रंग का लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर भी सियाह नकाब था। क्लास्टर तेजी से कदम उठाती हुई उस कैबिन की जानिब बढ़ती चली गई। क्लास्टर ने कैबिन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई नकाब पोश ने मेज के नीचे हाथ डालकर कोई बटन प्रेस किया तो शीशे की दीवार यकलख्त सियाह हो गई। अब कैबिन से बाहर का मंजर तो देखा जा सकता था मगर बाहर से कैबिन में नहीं झांका जा सकता था। बैठो, नकाब पोश ने क्लास्टा की जानिब गहरी नजरों से देखते हुए कहा तो क्लास्टा मेज के सामने मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गई। बहुत जबरदस्त इंतजाम किया है यहाँ तुमने जैक, क्लास्टा ने सियाह पोश की जानिब देखते हुए कहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे ही इंतजाम करता हूँ क्लास्टा, तुम बताओ तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, नकाब पोश ने अपने चेहरे से नकाब उतारते हुए कहा। वो खासा खुश शक्ल नौजवान था जिसकी आंखों में बला की चमक थी। वो गैर मुल्की था। परेशानी? कैसी परेशानी? इस पसमानदा से मुल्क में भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है, क्लास्टा ने बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। नहीं क्लास्टा, बाज औकात खुशफहमियाँ बड़े नुकसान का भी पेश खेमा साबित हो सकती हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा होशियार और मुस्तैद रहना बेहद जरूरी है, जैक ने कहा। तुम तो खामखा ही परेशान हो रहे हो, ये एशियाई तो मेरे नजदीक इंतहाई बेवकूफ हैं, क्लास्टर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल छोड़ो, ये बताओ तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था उसका क्या हुआ, जैक ने सर झटकते हुए कहा जैसे वो इस सिलसिले में क्लास्टर से मजीद ना उलझना चाहता हो। क्लास्टा, जिस काम के लिए जाए वो पूरा ना हो ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये एशियाई बाशिंदे भेड़ की तरह मासूम और बेजरन इंसान है, और फिर वो बूढ़ा, वो तो मेरे सामने बकरी के बच्चे की तरह मासूम और बेजरर साबित हुआ, क्लास्टर ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, इसका मतलब है कि तुमने डॉक्टर साकिब के जिस्म में CR इंजेक्ट कर दिया है, जैक ने मुसरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, क्लास्टर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। गुड, लेकिन ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साकिब तो अपने साय से भी भिदकने वाला इंसान है, और उसकी सिक्योरिटी, वो जहाँ जाता है मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स साय की तरह उसके सर पर मुसल्लत रहते हैं, फिर वो इतनी जल्दी और आसानी से तुम्हारे काबू में कैसे आ गया, जैक ने क्लास्टा की जानिब इश्तियाक भरी नजरों से देखते हुए कहा। शायद वो क्लास्टा की कारकर्दगी के बारे में तफसील जानना चाहता था। मैंने सबसे पहले डॉक्टर साकिब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की और ये जानने की कोशिश की कि डॉक्टर साकिब के सबसे ज्यादा रवाबित किसके साथ हैं। डॉक्टर साकिब ने चूंकि अपनी जिंदगी अपने मुल्क के लिए वक्फ कर रखी है इसलिए वो हर वक्त स्पेशल लेबोरेटरी में ही रहता है और शबो रोज मुल्क के मफादात के लिए काम करता रहता है। उसके बारे में यही बताया जा रहा था कि उसे लेबोरेटरी से निकलते और लोगों से मिलते जुलते बहुत कम देखा गया है। वो ज्यादा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर या सदर मुमलिकत या फिर अहम साइंसी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए लेबोरेटरी से बाहर आता है, वरना उसने अपनी रिहाइशगाह में उसी स्पेशल लेबोरेटरी में बना रखी थी। डॉक्टर साकिब के अजीज रिश्तेदारों से रवाबित बेहद कम थे। उसकी बीवी अरसा हुआ फौत हो चुकी थी। उसकी एक बेटी जो शादीशुदा है और अपने शोहर के साथ वेस्टर्न कार्मन में रहती है उससे मिलने कभी कभार पाकेशिया आ जाती थी। चूंकि डॉक्टर साकिब अपने साय से भी मोहतात रहने वाला इंसान था इसलिए वो अपनी बेटी को भी स्पेशल लेबोरेटरी में नहीं ले जाता था। उसकी बेटी नीलोफर जब भी अपने बाप से मिलने आती तो वो होटल में रिहायश इख्तियार करती और अपने आने की इत्तला डॉक्टर साकिब को दे देती। तब डॉक्टर साकिब उससे मिलने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के साथ इस होटल में जाता और और अपनी बेटी से मिलकर वापस लेबोरेटरी में आ जाता। मुझे जब डॉक्टर साकिब की बेटी नीलोफर के बारे में मालूमात हासिल हुई तो मैंने अपने स्पेशल ग्रुप को फौरी तौर पर वेस्टर्न कारमन रवाना कर दिया। मेरे ग्रुप ने डॉक्टर साकिब की बेटी को अगवा कर लिया और फिर मैं वेस्टर्न कारमन रवाना हो गई। मैंने वेस्टर्न कारमन पहुंचकर नीलोफर से जबरन उसके और उसके वालिद डॉक्टर साकिब के बारे में मालूमात हासिल की और फिर मैं वहीं से नीलोफर के मेकअप में पाकेशिया पहुंच गई। मैंने होटल खयाबान में नीलोफर के नाम से कमरा बुक कराया और फिर डॉक्टर साकिब को स्पेशल लेबोरेटरी में फोन करके अपनी आमद की इत्तला दे दी। मेरी गैर मुतवक्के आमद पर डॉक्टर साकिब हैरान तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने डॉक्टर साकिब को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मैं अपने शोहर के साथ वर्ल्ड टूर पर जा रही हूँ, इसलिए मैं खास तौर पर उनसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। चूंकि था भी ऐसा ही, इसलिए डॉक्टर साकिब को मेरी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने मुझसे अगले दिन मिलने का वादा कर लिया। उधर मेरे ग्रुप के आदमियों ने नीलोफर के शोहर को भी काबू में कर रखा था ताकि डॉक्टर साकिब अगर उससे कंफर्म करना चाहे तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल अगले रोज डॉक्टर साकिब मुझसे मिलने होटल खयाबान आ गए। मैंने चूंकि नीलोफर का मुकम्मल मेकअप कर रखा था और मैंने उसकी चंद अदाएं भी उसके साथ रहते हुए अपना ली थी, इसलिए डॉक्टर साकिब को मुझ पर शक ना हो सका। उसे मेरी आवाज पर शक जरूर हुआ था, लेकिन मैंने उसे ज्यादा शक करने का मौका ही नहीं दिया और मैंने उसे निडिल थ्रू गन से निडिल मारकर बेहोश कर दिया। फिर मैंने बर्क रफ्तारी से काम करते हुए उसके सर में CR इंजेक्ट किया और खामोशी से उस कमरे के मुल्हिका कमरे में आ गई जो मेरे दूसरे नाम से बुक था। मैंने अपने कमरे में आकर अपना नीलोफर वाला मेकअप खत्म किया और उसकी जगह एक और मेकअप कर लिया। मेरा चूंकि उस वक्त तक इस होटल में रहना जरूरी था जब तक डॉक्टर साकिब को होश न आ जाता, क्योंकि उसके होश में आने के बाद ही मैं उसके सर में मौजूद CR को ऑन कर सकती थी। इस होटल में अल्बर्ट जो मेरे मुआविन के तौर पर वेटर बना हुआ था वो मुझे पल पल की खबर पहुंचा रहा था। फिर उसने जैसे ही मुझे इत्तला दी कि डॉक्टर साकिब को होश आ गया है और वो बेहोश होने और अपनी बेटी के गायब होने पर वावेला मचा रहा है, तो मैंने CR ऑन कर दिया जिससे डॉक्टर साकिब उसी वक्त बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर साकिब के इस तरह अचानक बेहोश होने पर होटल में जैसे जलजला सा आ गया था। बहरहाल डॉक्टर साकिब को वहां से फौरी तौर पर ले जाने का बंदोबस्त किया गया और जब डॉक्टर साकिब को खुसूसी तौर पर एक स्पेशल एम्बुलेंस में ले जाया गया तो मुझे इत्मीनान हो गया। अब डॉक्टर साकिब जहाँ भी हो उसके सर में मौजूद चूंकि CR पूरी तरह से वर्क कर रहा है, इसलिए उसे किसी भी तरह होश में लाया ही नहीं जा सकता और हम यहाँ बैठे आसानी से डॉक्टर साकिब की माइंड मेमोरी कैच कर लेंगे और डॉक्टर साकिब का दिमाग पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार था और जैसे ही अल्बर्ट ने मुझे इत्तला दी मैं सामान समेट कर यहाँ पहुंच गई, प्लास्टा ने तफसील बताते हुए कहा। वेल डन प्लास्टा, तुमने वाकई तवील मगर बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करके डॉक्टर साकिब जैसे खपती और शक्कील मिजाज इंसान को स्पेशल लेबोरेटरी से बाहर लाने का प्लान बनाया था, वरना इस जैसे आदम बेजार इंसान को लेबोरेटरी से बाहर लाना नामुमकिन था, लेकिन तुमने इस नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया है। वेल डन, जैक ने क्लास्टा के दिल खोल कर तारीफ करते हुए कहा तो क्लास्टा का चेहरा फिर से मुसर्रत से खिल उठा। मैंने तो अपना काम कर दिया है, तुम बताओ माइंड मेमोरी कैचर मशीन तैयार है या नहीं, क्लास्टा ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। हम उसी पर काम कर रहे हैं, बस ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लगेगा और मशीन पूरी तरह वर्किंग पोजिशन में आ जाएगी और फिर इस मशीन में डॉक्टर साकिब की माइंड मेमोरी पूरी तरह ट्रांसफर हो जाएगी और डॉक्टर साकिब का माइंड मुकम्मल तौर पर ब्लैंक हो जाएगा। डॉक्टर साकिब की माइंड मेमोरी पूरी तरह MC कंप्यूटराइज्ड मशीन में होगी जिससे हम उसके जहन में मौजूद तमाम फार्मूलों की तफसील हासिल कर लेंगे और डॉक्टर साकिब का माइंड हमारे लिए एक खुली किताब की तरह होगा जिससे हम अपने मतलब की तमाम राज हासिल कर सकते हैं, जैक ने कहा। ये सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, क्लास्टा ने मुंह बनाते हुए कहा। कौन सी बात, जैक ने चौंक कर पूछा। ये तो मुझे मालूम है कि डॉक्टर साकिब इन दिनों एक अहम और इनकलाबी इजाद में मसरूफ है। वो एक IB नामी ऐसे फार्मूले पर काम कर रहा है जिससे वो दिफा की दुनिया में इनकलाब ला सकता है। इस इजाद को उसने आयरन ब्लॉक का नाम दिया है जिसे कोड में IB कहा जाता है। IB ऐसी रेज का मजमुआ है जिसे डॉक्टर साकिब वाकेशिया में एक ब्लॉक की सूरत में फैलाना चाहता है। इस रेस की मौजूदगी में दुनिया के किसी भी हिस्से से चलाया गया मिसाइल रीबैक हो जाता है, जिससे पाकेशिया का दिफाई निजाम मजबूत तरीन बन जाएगा और पाकेशिया पर मिसाइल फायर करने का कोई ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस मुल्क से इस मिसाइल को फायर किया जाता आईबी रेस की जद में आकर वो मिसाइल वापस उसी मुल्क में जा गिरता। हमारी इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर साकिब इन रेस पर बरसों से काम कर रहा है और वो इन रेस का जाल फैलाने में मसरूफ है। ये फार्मूला इंतहाई पेचीदा और इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए मैं सोच रही थी कि डॉक्टर साकिब जो इस फार्मूले पर काम कर रहा है, इस फार्मूले को मुकम्मल तौर पर अपने जहन में कैसे रख सकता है। इस फार्मूले पर इसने यकीनन फाइल वर्क किया होगा और वो इसी फाइल वर्क पर ही अमल करता रहा होगा। हमारा मिशन चूंकि आईबी फार्मूले का हुसूल है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले के हुसूल पर काम करना चाहिए। डॉक्टर साकिब के दिमाग की मेमोरी को हासिल करके हमें क्या फायदा हो सकता है? तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टर साकिब के जहन में वो तमाम फार्मूला होगा और एमसी मशीन इस मुकम्मल फार्मूले को उसके जहन से निकाल लेगी। अगर उसके जहन में मुकम्मल फार्मूला ना हुआ तो, क्लास्टर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है क्लास्टर, वाकई बड़े से बड़ा साइंसदान किसी फार्मूले को मुकम्मल तौर पर अपने जहन में नहीं रख सकता। इसके लिए वो बाकायदा इसका फाइल वर्क करता है और फिर इस फाइल वर्क पर अमल करते हुए वो इस फार्मूले को आगे बढ़ाता है। मगर तुम शायद भूल रही हो कि आईबी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साकिब की ही ईजाद है। इस फार्मूले पर नुक्ता अव्वल से आखिर तक उसने ही काम किया है। इस काम में इसे बरसों लगे होंगे। वो यकीनन फाइल वर्क के तहत इस फार्मूले को आगे बढ़ाता रहा होगा, मगर हकीकत में उसके जहन में मुकम्मल फार्मूला मौजूद होगा। कुछ उसके शऊर में और कुछ लाशऊर में। शऊर में रहकर उसे फाइल वर्क की जरूरत नहीं पड़ती होगी। जहां उसे जरूरत महसूस होती होगी तब ही वो फाइल वर्क करता होगा। हमारी माइंड कैचर मशीन में ये खूबी बदल जाता मौजूद है कि वो शऊर और लाशऊर को मुकम्मल तौर पर कैच कर सकती है। इस मशीन पर काम करके मैं डॉक्टर साकिब के शऊर और लाशऊर में मौजूद आईबी फार्मूले को आसानी से निकाल लूंगा। अगर बफर्ज़ मुहाल इस फार्मूले पर कोई काम होना बाकी भी होगा, तो मैं इस मशीन को इस अंदाज में इस्तेमाल करूंगा कि वो बाकी मानदा फार्मूले को भी आसानी से मुकम्मल कर ले, जैक ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, वरना मेरा तो यही ख्याल था कि हमें किसी तरह डॉक्टर साकिब से डायरेक्ट उसके तहरीरी फार्मूले को हासिल करना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें स्पेशल लेबोरेटरी पर रेड ही क्यों ना करना पड़े, प्लास्टर ने कहा। जब सीधी उंगलियों से घी निकल रहा है तो इन उंगलियां टेढ़ी करने की क्या जरूरत है, जैक ने कहा, तो क्लास्टा बेख्तियार हंस पड़ी। ये भी ठीक है, लेकिन जैक एक बात और मेरे जहन में आ रही है, क्लास्टा ने किसी ख्याल के तहत चौंक कर पूछा। वो क्या, जैक ने पूछा। डॉक्टर साकिब अपना फार्मूला मुकम्मल कर चुका है और वो ऐसी मशीनरी बनाने में भी कामयाब हो चुका है जिससे वो पाकिस्तान में आई बी रेस फैला कर पाकेशिया को दिफाई लिहाज से मजबूत कर सकता है। हम अगर डॉक्टर साकिब का फार्मूला हासिल कर लेंगे तो इससे पाकेशिया को क्या नुकसान पहुंचेगा? इसका दिफा तो बहरहाल मजबूत ही होगा। डॉक्टर साकिब की बनाई हुई मशीन को पाकेशिया का कोई और साइंसदान भी तो इस्तेमाल में ला सकता है, प्लास्टर ने कहा। हमारा मिशन इस फार्मूले के साथ साथ इस स्पेशल मशीन को तबाह करने का भी है, प्लास्टर। फार्मूला हासिल करने के बाद हम इस मशीन को भी तबाह कर देंगे, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कैसे? वो मशीन स्पेशल लेबोरेटरी में है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस लेबोरेटरी में एक मक्खी भी उन लोगों के नजरों में आए बगैर नहीं गुजर सकती, क्लास्टा ने कहा। अगर डॉक्टर साकिब इस मशीन को खुद जाकर तबाह कर दे तो, जैक ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, तो इसकी बात सुनकर क्लास्टा बेख्तियार चौंक पड़ी। डॉक्टर साकिब, ओह मगर कैसे? उसका जहन तो मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। एमसी मशीन जब उसके जहन से उसकी तमाम मेमोरी हासिल कर लेगी तो डॉक्टर साकिब का जहन किसी स्लेट की तरह साफ हो जाएगा। यहाँ तक कि होश में आने के बाद वो खुद को भी नहीं पहचान सकेगा। फिर वो भला इस मशीन को स्पेशल लेबोरेटरी में जाकर कैसे तबाह कर सकता है, प्लास्टर ने हैरान होते हुए कहा। तुम ब्लैक जैक की सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो प्लास्टर, तुम्हें सिर्फ माइंड कैचर मशीन के बारे में मालूम है। मैं ब्लैक जैक एक ऐसा साइंसदान हूँ जिसके सामने दुनिया भर के साइंसदान हैच हैं और उनके माइंड जीरो होकर रह जाते हैं। अगर मैं किसी इंसान के दिमाग को अपनी कंप्यूटराइज मशीन में ट्रांसफर कर सकता हूँ और उस इंसान का जहन ब्लैंक कर सकता हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, میں اس انسان کے ذہن کو اپنے حکم کی تعمیل کے لیے اسے اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، جیک نے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ؟ پلاسٹر نے چونک کر کہا۔ ہاں، میرے پاس ایسی مشین بھی ہے جس سے میں کسی بھی انسان کے خالی ذہن کو اپنی ہدایات کے مطابق اپنے حکم پر چلانے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ تم اس مشین کو مائنڈ کنٹرولر مشین بھی کہہ سکتی ہو، جیک نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ گڈ شو ریئلی جیک، تم اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے مالک ہو۔ ایکریمیا میں تمہارے نام کی شہرت یوں ہی نہیں ہے، تم ذہین ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے سائنسدان ہوگے، یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ تم اپنی ان مشینوں کے ذریعے واقعی پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر ناچنے پر مجبور کر سکتے ہو، کلاسٹر نے جیک کی طرف دیکھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تم بلیک جیک کی صلاحیتوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو کلاسٹر، میرے ساتھ رہو گی تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ بلیک جیک واقعی ماسٹر مائنڈ ہے جس کا مقابلہ کرنا اس دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں، بلیک جیک نے فاخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ مجھے تم جیسے ذہین ایجنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں کوشش کروں گی کہ چیف مجھے اور میری اسپیشل ایجنسی کو تمہاری آرگنائزیشن میں شامل کر دے، میں اور تم مل کر اس پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیں گے، کیا تم مجھے اپنے ساتھ رکھنے اور اپنے ساتھ کام کرنے کی اجازت دو گے؟ کلاسٹر نے سوالیہ نظروں سے جیک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر کلاسٹر جیسی حسین پارٹنر مجھے مل جائے تو اس سے میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہاری صلاحیتیں کسی بھی طرح میری صلاحیتوں سے کم نہیں۔ میں نے اگر ایکریمیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے تو تم بھی اسرائیل کی ناک سمجھی جاتی ہو، ورنہ تم جیسی بظاہر سیدھی سادی نظر آنے والی لڑکی اسرائیل کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کی سربراہ ہو کیسے ممکن ہے؟ بلیک جیک نے کہا۔ گڈ، رات کے بعد بلیک جیک اور کلاسٹر ایک ساتھ کام کریں گے، بلیک جیک کا ہر مشن کلاسٹر کا اور کلاسٹر کا ہر مشن بلیک جیک کا ہوگا، کلاسٹر نے کہا۔ ڈن، بلیک جیک نے اٹھ کر کلاسٹر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو کلاسٹر نے بھی اٹھ کر اس سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آؤ اب اس مشن کو مکمل کریں، پھر ہمیں یہاں سے واپس بھی جانا ہے اپنی نئی دوستی اور اپنے نئے سفر کے آغاز کرنے، بلیک جیک نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہماری یہ دوستی بے حد مضبوط اور زندگی بھر کا ساتھ دینے کے لیے کافی ہوگی، کلاسٹر نے بھی جواب اور مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں شیشے کے کیبن سے نکل کر ہال میں آ گئے جہاں مشینوں پر سفید ایپرن اور نقاب پہنے 6 افراد کام کر رہے تھے۔ بلیک جیک نے ان سے مشینوں کی رپورٹ مانگی، کیبن سے نکلتے وقت اس نے اپنے چہرے پر سیاہ نقاب چڑھا لیا تھا، وہ چند لمحے خود تمام مشینوں کو چیک کرتا رہا، پھر وہ مطمئن ہو کر کلاسٹر کے پاس آ گیا۔ کیبن میں چلو، بلیک جیک نے کہا تو کلاسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں واپس کیبن میں آ گئے۔ بلیک جیک اپنی کرسی پر اور کلاسٹر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بلیک جیک نے میز کی دراز کھولی، اس دراز میں ایک کنٹرول پینل تھا۔ بلیک جیک نے ایک بٹن دبایا تو اچانک اس کی اور کلاسٹر کی کرسیوں کے نیچے زمین اوپن ہوئی اور پھر ان کی کرسیاں جیسے زمین کے نیچے اترتی چلی گئیں۔ سنبھل کر، ہم نیچے تہخانے میں موجود آپریشن روم میں جا رہے ہیں، بلیک جیک نے کہا تو کلاسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران جیسے ہی بلیک روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران صاحب، بلیک زیرو نے سلام دعا کے بعد عمران سے کچھ کہنا چاہا تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ یہ بتاؤ، بلیک جیک اکیلا آیا ہے یا وہ اپنے ساتھ نہ ہونے والی بیوہ، میرا مطلب ہے سالی کی بڑی بہن کو بھی لایا ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ بلیک جیک؟ کون بلیک جیک؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس نام سے قطعی نہ آشنا ہو۔ تم بلیک جیک کو نہیں جانتے؟ حیرت ہے، اس نے تو پوری دنیا میں اپنے کام کا ڈنکا بجا رکھا ہے، حال ہی میں اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس سے پوری دنیا کے سائنسدان اس کا کارنامہ جان کر سر کے بل کھڑے ہو گئے تھے، عمران نے کہا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس نے پچھلے دنوں 4 مرغیوں کے انڈوں سے 10 ہاتھی پیدا کر کے سائنسدانوں کو اپنے سر دیواروں پر مارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہی نہیں، اس سے پہلے وہ انسان کو گدھا اور گدھے کو عالم فاضل انسان بنانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے، عمران نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ بلیک زیرو کی کم عقلی پر واقعی حیران ہو رہا ہو۔ इमरान साहब, मामला इंतहाई सीरियस है, प्लीज मेरी बात सुने, ब्लैक जीरो ने अपनी हंसी दबाते हुए संजीदगी से कहा। वो समझ गया था कि इमरान पर इस वक्त अहमकपन का भूत सवार है। अगर इसकी बातों पर इसने हंसना शुरू कर दिया तो वो इमरान को वो बात नहीं बता सकेगा जिसके लिए उसने इमरान को बुलाया था। मामला सीरियस है, अरे बाप रे, क्या कह रहे हो? तुमने भी मुर्गे के अंडों से हाथी के बच्चे निकालने का तजुर्बा तो नहीं कर लिया? इमरान भला आसानी से कहां बाज आने वाला था। इमरान की बात पर ब्लैक जीरो को हंसी तो बहुत आई मगर वो संजीदा ही रहा। डॉक्टर साकिब ने अपनी ईजाद करदा आईबी मशीन तबाह कर दी है, ब्लैक जीरो ने इमरान को संजीदा करने के लिए अचानक कहा तो उसकी बात सुनकर इमरान हकीकतन उछल पड़ा। क्या क्या कहा तुमने? इमरान ने ब्लैक जीरो की जानिब ऐसी नजरों से देखते हुए कहा जैसे उसने ब्लैक जीरो की बात एक तरीके से सुनी ही ना हो। स्पेशल लेबोरेटरी में डॉक्टर साकिब ने अपनी ईजाद करदा आईबी मशीन तबाह कर दी है। इस मशीन की तबाही से न सिर्फ खुद डॉक्टर साकिब बल्कि 20 साइंसदान भी हलाक हो गए हैं और लेबोरेटरी का एक हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया है, ब्लैक जीरो ने इमरान को संजीदा होते देख कर जल्दी से कहा तो इमरान के चेहरे पर शदीद हैरत और परेशानी के तासुरात नुमाया हो गए। ये रिपोर्ट तुम्हें किसने दी है कि आईबी मशीन को खुद डॉक्टर साकिब ने ही तबाह किया है? इमरान ने परेशानी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा। डॉक्टर साकिब स्पेशल लेबोरेटरी के एक मखसूस हिस्से में तकरीबन 24 साइंसदानों के साथ काम कर रहे थे। जब डॉक्टर साकिब ने इस मशीन को तबाह किया तो उस वक्त उनके हमराह उनकी पूरी टीम थी जिनमें से 20 साइंसदान हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए। उन्हीं में से एक डॉक्टर ने जिसका नाम डॉक्टर कासिम है सरदावर को बताया है और सरदावर ने मुझे रिपोर्ट दी। इसके अलावा लेबोरेटरी में रोजमर्रा की बनने वाली फिल्म में भी डॉक्टर साकिब को मशीन तबाह करते दिखाया गया है, ब्लैक जीरो ने कहा। लेकिन डॉक्टर साकिब ने ऐसा क्यों किया? वो तो पिछले 15 बरसों से इस मशीन पर काम कर रहे थे और अब जब उनकी मशीन पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी थी तो उन्होंने खुद ही इस मशीन को तबाह कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इमरान ने परेशानी के आलम में कहा। यही तो हैरत और परेशानी की बात है। इस वाकये ने सरदावर समेत पूरी हुकूमती मशीनरी को हिला कर रख दिया है। जनाब सदर और प्राइम मिनिस्टर तक स्पेशल लेबोरेटरी में पहुंच चुके हैं। मामले की तहकीक के लिए सरसुल्तान ने खुसूसी तौर पर सदर साहब के हुक्म से यहाँ फोन किया था, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान सोच में डूब गया। तुमने हैरत अंगेज और इंतहाई सनसनीखेज खबर सुनाई है। इस खबर को सुनकर मैं भी हिल गया हूँ। इस मशीन की तैयारी में पाक एशिया के करोड़ों आवाम के खून पसीने की कमाई लगाई जा रही थी। डॉक्टर साकिब ने इस मशीन को तैयार करने के लिए दिन रात एक कर रखा था। वो जिस जोश और जुनून की कैफियत से इस मशीन को तैयार कर रहे थे वो खुद ही इस मशीन को तबाह कर देंगे, बात कुछ हलक से नहीं उतर रही, इमरान ने वाकई इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। हाँ इमरान साहब, यही सोच सोच कर मैं भी परेशान हुआ जा रहा हूँ। आखिर डॉक्टर साकिब को यकलख्त हो क्या गया था जिस मशीन को बनाने में उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 15 साल सर्फ कर दिए थे, वो खुद अपने हाथों से इस मशीन को तबाह कैसे कर देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, डॉक्टर साकिब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। एक इंसान अपनी औलाद को इंतहाई नाजो नाम से पाल पोस कर बड़ा करे और फिर बगैर किसी वजह के उसका गला घोंट कर उसे मार दे, ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, कतई नामुमकिन, इमरान ने होंठ भींचते हुए इनकार में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर ये काम किसका हो सकता है? आपका क्या ख्याल है, डॉक्टर कासिम ने गलत रिपोर्ट दी होगी, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, डॉक्टर कासिम भी एक जिम्मेदार और मुहिब्बुल वतन साइंसदान है, वो भी कोई गलत बात नहीं कह सकते, इमरान ने कहा। तब फिर एक ही बात का इम्कान रह जाता है, ब्लैक जीरो ने कहा। कैसा इम्कान, इमरान ने चौंक कर पूछा। ये कि डॉक्टर साकिब की जगह किसी और ने ले रखी होगी और उसने खुदकुश हमले के तहत इस मशीन को तबाह किया होगा। आजकल खुदकुश हमले जिस तरह पूरी दुनिया में जोर पकड़ते जा रहे हैं यह ऐसा ही मामला मालूम होता है, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हारी अकल घास खा गई है क्या? डॉक्टर साकिब की जगह लेना और फिर स्पेशल लेबोरेटरी में जाना किसी के लिए इस कदर आसान हो सकता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर बोखला हट नाचने लगी। वाकई डॉक्टर साकिब जो 24 घंटे लेबोरेटरी में ही रहते थे उनकी जगह कौन ले सकता था? और फिर स्पेशल लेबोरेटरी के हिफाजती इंतजाम اس قدر سخت اور فول پروف تھے کہ کسی بھی طرح کوئی غیر متعلقہ آدمی اسپیشل لیبارٹری میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. سوری عمران صاحب، میں نے تو ایک امکان ظاہر کیا تھا، بلیک زیرو نے شرمندگی سے کہا. کبھی کبھی تمہاری سوچ اور تمہاری عقل تمہارے نام کی طرح بالکل ہی زیرو ہو جاتی ہے. اپنے دماغ کو حاضر رکھا کرو، ایکس ٹو کی ایسی ہی سوچ ہوگی تو اس کے ٹیم کے ممبروں کا کیا حال ہوگا، عمران نے تلخ لہجے میں کہا. تو بلیک زیرو نے ہونٹ بھینچ لیے اور سر جھکا لیا. اب وہ عمران کی بات کا کیا جواب دیتا؟ معاملہ انتہائی نازک اور خوفناک تھا، جس نے عمران جیسے انسان کو بھی اس قدر سنجیدہ اور پریشان کر دیا تھا. ایسی صورتحال میں عمران واقعی کسی غلط سوچ اور غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اسے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. چند ہی لمحوں میں رابطہ مل گیا. یس، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی. ایکس ٹو، عمران نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں کہا. اوہ یس چیف، جولیا اسپیکنگ. ایکس ٹو کی آواز سن کر دوسری طرف سے جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں عمران کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تمہیں اس کے ساتھ فوری طور پر اسپیشل لیبارٹری میں جانا ہے، عمران نے ایکس ٹو کے لہجے میں کہا. یس چیف، جولیا نے بغیر کسی تمہید کے کہا. تم وہاں ایکس ٹو کی نمائندگی کرو گی، وہاں ایک حادثہ ہوا ہے جس کے بارے میں تمہیں انکوائری کرنی ہے کہ وہ حادثہ کیوں ہوا اور کیسے رونما ہوا، عمران نے کہا. اوکے چیف، کیا آپ مجھے اس حادثے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. اسپیشل لیبارٹری کے ایک مخصوص حصے میں سائنسدان ڈاکٹر ثاقب ایک فارمولے پر کام کر رہا تھا. وہ ایک اسپیشل مشین تیار کر رہا تھا جس پر پچھلے 15 برسوں سے کام ہو رہا تھا. ڈاکٹر ثاقب 24 سائنسدانوں کی ٹیم کے ساتھ مل کر اس مشین کو مکمل کر چکا تھا. اس مشین کی ایجاد سے دفاع کی دنیا میں انقلاب آ سکتا تھا اور پاک ایشیا کا دفاع پوری دنیا کے دفاعی نظام سے مضبوط اور انتہائی طاقتور ہو سکتا تھا. مگر اب اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر ثاقب نے اپنی ایجاد کردہ آئی بی مشین کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے. اس مشین کی تباہی سے نہ صرف ڈاکٹر ثاقب بلکہ پاک ایشیا کے 20 بہترین سائنسدان بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور 4 سائنسدان شدید زخمی ہوئے ہیں. ان سب کی ہلاکت سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. زخمی ہونے والے سائنسدانوں میں ڈاکٹر قاسم کے کہنے کے مطابق یہ ساری کارروائی خود ڈاکٹر ثاقب نے کی ہے. اس کی حالت چونکہ تشویشناک ہے اس لیے وہ زیادہ بیان نہیں دے سکا. ایسی ہی لیبارٹری میں روزمرہ کی بننے والی فلم میں بھی ریکارڈ ہے. تمہیں وہاں جا کر معلوم کرنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ ڈاکٹر قاسم نے جو بیان دیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے اور اس فلم میں کیا ہے. بہرحال مجھے مفصل رپورٹ چاہیے کہ وہاں دراصل ہوا کیا تھا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. یس سر، اور کوئی حکم سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. عمران نے چونکہ اسے خود ہی تفصیل بتا دی تھی اس لیے اس بار اسے چیف سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے. ایک بات اور، تم ڈپٹی چیف ہو اس لیے عمران تمہاری ماتحتی میں کام کرے گا. میں نے اسے وارن کر دیا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ تعاون نہ کرے اور اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو مجھے فون کر دینا، پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. یس سر، میں عمران کو سمجھا دوں گی، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. چند لمحے عمران سوچتا رہا، پھر اس نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھ کر فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی. ایکس ٹو، عمران نے ریسیور اٹھا کر ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں کہا. سلیمان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی. ہاں بولو، عمران نے اصل آواز میں کہا. ایکریمیا سے ریڈ برونز کی کال ہے، دوسری طرف سے سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، اس نمبر پر اس کال کو لنک کر دو، عمران نے کہا. چند لمحوں بعد ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی. ہیلو، دوسری طرف سے ایک منہنی سی آواز سنائی دی. یس، پرنس آف ڈھمپ اسپیکنگ، عمران نے کہا. عمران نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا تاکہ بلیک زیرو بھی ان کی باتیں سن سکے. اوہ پرنس، میں برونز بول رہا ہوں، ریڈ برونز، دوسری طرف سے کہا گیا. معلوم ہے، یہ بتاؤ کام کا کیا ہوا ہے، عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا. میں نے بلیک جیک کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنی ہے. آپ کی اطلاع بالکل درست ہے، بلیک جیک ناراک بلکہ پورے ایکریمیا میں کہیں موجود نہیں ہے. انتہائی خفیہ ذرائع سے صرف اس بات کا پتا چلا ہے کہ وہ کسی ایشیائی ملک میں گیا ہوا ہے. تاحال مجھے اس کی انفارمیشن نہیں مل سکی کہ وہ کہاں گیا ہے. میرے آدمی کام کر رہے ہیں، وہ جلد ہی معلوم کر لیں گے کہ بلیک جیک اس وقت کہاں ہے. دوسری طرف سے ریڈ برونز نے کہا, جو ایکریمیا میں بطور فورن ایجنٹ کام کرتا تھا, کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ بلیک جیک ایشیا کب روانہ ہوا تھا؟ عمران نے پوچھا. بلیک جیک آج سے ٹھیک ایک ماہ پہلے ایئرپورٹ کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا, اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا, ریڈ برونز نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا وہ اپنے اصل حلیے میں تھا؟ عمران نے پوچھا. یس باس, وہ اپنے اصل حلیے میں ایئرپورٹ کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا, ریڈ برونز نے کہا. وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ عمران نے کہا. وہ اپنی کار میں اکیلا جاتے دیکھا گیا تھا باس, اس کی کار ایک ماہ سے ایئرپورٹ پارکنگ میں موجود ہے, ریڈ برونز نے کہا. اگر وہ اصل حلیے میں تھا تو اس نے جس فلائٹ میں سفر کیا ہوگا اپنے اصل نام سے ہی کیا ہوگا. ایئرپورٹ سے انکوائری کرو کہ وہ کہاں گیا ہے, عمران نے کہا. پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے.